मैं चंदन कुमार सामाजिक विज्ञान संकाय के बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूं और आपके बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र की रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूं, जिसके सिलेबस के अंतर्गत सेकंड यूनिट है भारतीय समाज का स्वरूप, उसके अंतर्गत परंपरागत आधार दिया हुआ है, जिसके अंदर तीसरा चैप्टर है पुरुषार्थ, जिसकी रिकॉर्डिंग मैं करने जा रहा हूं, जो निम्न प्रकार है। भूमिका, भारतीय जीवन प्रणाली में एक लंबे समय से आध्यात्मिकता तथा सांसारिकता को एक दूसरे का पूरक माना जाता रहा है। ये दोनों लक्ष्य एक दूसरे के विरोधी होने के कारण इनकी प्राप्ति एक साथ करना कठिन कार्य हो सकता है। इस दृष्टिकोण से एक ऐसा योजना का निर्माण किया गया जिसके द्वारा संपूर्ण समाज तथा विभिन्न समूहों के प्रति व्यक्ति के सभी कर्तव्यों को कुछ विशेष वर्गों में विभाजित किया जा सके। इस प्रकार व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करने और उसके प्रमुख कर्तव्यों को चार प्रमुख भागों में विभाजित करने वाली योजना को ही हम पुरुषार्थ कहते हैं। यद्यपि पुरुषार्थ का तात्पर्य उन सभी कर्तव्यों से है जिनका उल्लेख हम धर्म के अंतर्गत कर चुके हैं, लेकिन उपनिषदों, गीता और स्मृतियों में पुरुषार्थ का तात्पर्य जीवन के चार आधारभूत कर्तव्यों से है, जिन्हें क्रमशः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहते हैं। ये चारों कर्तव्य चार पुरुषार्थ हैं जिनकी पूर्ति करके ही मनुष्य निर्वाण का अधिकारी हो सकता है। चारों पुरुषार्थों का अर्थ स्पष्ट करते हुए श्री कपाड़िया का कथन है कि मोक्ष मानव जीवन के चरम उद्देश्य तथा मानव की आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक है। अर्थ मानव के प्राप्त करने के सहज स्वभाव की ओर संकेत करता है तथा उसकी धन के संग्रह, उपभोग व इससे संबंधित अन्य प्रवृत्तियों को स्पष्ट करता है। काम मानव के सहज स्वभाव और भाविक जीवन को व्यक्त करता है तथा इसका कार्य मनुष्य की काम भावना और सौंदर्य प्रियता की वृत्ति को संतुष्ट करना है। ये दोनों अर्थ तथा काम इस संसार में व्यक्ति के भौतिक लगाव, कार्यकलाप तथा जीवन की सफलता का प्रतिनिधित्व करते हैं। धर्म मानव के पार्श्विक एवं दैवी प्रकृति के बीच की श्रृंखला है। इस प्रकार ये चारों उद्देश्य आध्यात्मिकता के लिए किए गए प्रयत्नों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। शाब्दिक रूप से पुरुषार्थ का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि पुरुषार्थाय पुरुषार्थ, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना ही पुरुषार्थ है। यहाँ पर लक्ष्य का तात्पर्य जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति से है। इससे स्पष्ट होता है कि वास्तव में मोक्ष एक पुरुषार्थ नहीं बल्कि यह तो केवल एक लक्ष्य है। वास्तविक पुरुषार्थ केवल धर्म, अर्थ और काम ही है जिसके माध्यम से मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार पुरुषार्थ का वास्तविक अर्थ उद्योग करने अथवा प्रयास करने से है। गीता में सभी पुरुषार्थों को कर्म की धारणा के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है और कर्म का संबंध मोक्ष से जोड़ने के लिए निष्काम कर्म को सर्वोपरि महत्व दिया गया है। यह सच है कि पुरुषार्थ से मिलते जुलते कर्तव्य की भावना का महत्व संसार के सभी धर्मों में है, लेकिन अन्य धर्मों में धार्मिक विश्वास प्रधान है जबकि उद्योग की भावना गौण है। इसके विपरीत भारतीय समाज में पुरुषार्थ ही धर्म का वह प्रमुख आधार रहा है और इसकी विशेषता ने भारतीय समाज को अपूर्व बना दिया है। प्रस्तुत अध्याय में हम इन चारों पुरुषार्थों का पृथक विवेचन करके सामाजिक व्यवस्था में उनके समाजशास्त्रीय महत्व को स्पष्ट करेंगे। हेडिंग धर्म, धर्म के प्रत्येक की विस्तृत विवेचना हम इस पुस्तक के आरंभ में ही कर चुके। यहाँ पर यह कहना आवश्यक है कि धर्म सभी पुरुषों में सर्व प्रमुख है, जिसके बिना अन्य किसी भी पुरुषार्थ को समुचित रूप से पूरा नहीं किया जा सकता। एक पुरुषार्थ के रूप में धर्म का तात्पर्य उन सभी कर्तव्यों को पूर्ण करने जैसे है जो लोक हितकारी है तथा जिनके द्वारा व्यक्ति को इस जीवन तथा परलौकिक जीवन में अभ्युदय की प्राप्ति होती है। इसी आधार पर महाभारत में श्री कृष्ण के कहा है कि धर्म वह है जो संपूर्ण प्राणी मात्र की रक्षा करता है तथा वह उन सभी को धारण करता है। इस प्रकार धर्म का तात्पर्य सामान्य धर्म व स्वधर्म दोनों का निर्वाह करना है। इस पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए सभी हिंदू व्यवस्थाओं में व्यक्ति के अनेक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत सभी वर्णों के अपने अलग अलग धर्म है जिनकी पूर्ति से ही इस पुरुषार्थ की प्राप्ति की जा सकती है। आश्रम व्यवस्था में सभी आश्रमों के अंतर्गत धर्म को आधारभूत माना गया है, अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में पवित्र त्याग, ज्ञान और शुद्धता के द्वारा धर्म की पूर्ति, गृहस्थ आश्रम में पंच महायज्ञों, दान तथा सांसारिक कर्तव्यों के द्वारा धर्म की पूर्ति, वानप्रस्थ आश्रम में यज्ञ, ज्ञान के प्रसार तथा संयम के द्वारा धर्म का संपादन तथा संन्यास आश्रम में सभी प्राणियों के प्रति समान दृष्टिकोण और निवृत्त के द्वारा पुरुषार्थ को प्राप्त करने पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थितियों में व्यक्ति के विभिन्न कर्तव्यों के निर्धारण में भी एक पुरुषार्थ के रूप में धर्म के महत्व को स्पष्ट किया जाता है। भारतीय जीवन दर्शन में धर्म एक पुरुषार्थ इसलिए है क्योंकि इसे उद्योग अथवा प्रयास से ही प्राप्त किया जा सकता है। धर्म का संबंध भाग्य अथवा विश्वास से नहीं, परंतु यह एक वैज्ञानिक तथ्य है जिसकी उपयोगिता को किसी भी समय समझा जा सकता है। आज दुर्खिम की विवेचना के संदर्भ में धर्म को एक सामाजिक तथ्य के रूप में देखा जाने लगा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि दुर्खिम का सिद्धांत हिंदू धर्म के व्यवहारिक स्वरूप की ही एक संक्षिप्त अभिव्यक्ति है। हमारे समाज में धर्म का रूप पूर्णतया सामाजिक विशेषताओं से युक्त रहा है, जिसमें सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होने का गुण विद्यमान है। गीता में श्री कृष्ण ने इस पुरुषार्थ की वास्तविकता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो व्यक्ति प्रत्येक कार्य का फल चाहते हैं तथा जिनका यह विचार है कि स्वर्ग से बढ़कर और दूसरी कोई चीज ही नहीं है, वे अविवेकी होने के साथ ही भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति रखते हैं। उनके अंतःकरण में कोई निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। इस पुरुषार्थ की वास्तविक पूर्ति वही व्यक्ति करता है जो कर्म करने मात्र में विश्वास रखता है, उसके फल में नहीं। इस अर्थ में धर्म एक लक्ष्य नहीं है, यह केवल एक साधन है जो व्यक्ति को अपना दायित्व पूरा करने की प्रेरणा देता है। पुरुषार्थ के अंतर्गत अगली हेडिंग है अर्थ। अर्थ दूसरा महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है जिसके बिना वैयक्तिक, पारिवारिक तथा सामाजिक दायित्वों की पूर्ति नहीं की जा सकती। अर्थ शब्द को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। श्री प्रभु के अनुसार अर्थ का तात्पर्य उन सभी उपकरणों अथवा भौतिक साधनों से है जो सांसारिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। वैदिक साहित्य में अर्थ शब्द का प्रयोग जिन विभिन्न संदर्भों में किया गया है उसके आधार पर श्री गोखले ने लाभ, धन तथा सुविधा आदि का उल्लेख किया है। ऋग्वेद के आधार पर पुरुषार्थ के रूप में अर्थ का तात्पर्य उन सभी भौतिक वस्तुओं से है जिनकी गृहस्थी चलाने, परिवार बसाने तथा धार्मिक कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर लालन जी गोपाल के शब्दों में अर्थ शब्द धन, संपत्ति या मुद्रा का पर्यायवाची नहीं है, यह भौतिक सुखों की सभी आवश्यकताओं और साधनों की ओर संकेत करता है। अर्थ मनुष्य की शक्ति तथा ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा के लिए प्रयुक्त हुआ है। इन सभी विचारों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अर्थ का तात्पर्य उन सभी पदार्थों तथा साधनों से है जिनकी सहायता से व्यक्ति अपने विभिन्न सांसारिक दायित्वों को पूरा करता है। भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि इसने व्यक्ति के सामने धर्म और मोक्ष का आदर्श प्रस्तुत करने के बाद भी उसे अन्य व्यक्तियों के प्रति अपने कर्तव्यों से पृथक हो जाने की अनुमति नहीं दी। इसी कारण अर्थ को एक पुरुषार्थ का रूप देकर व्यक्ति को उद्योग करने का प्रोत्साहन दिया गया। वास्तव में यह परंपरा वैदिक काल से ही विद्यमान रही है। ऋग्वेद की ऋचाओं में यह प्रार्थना की गई है कि मनुष्य के धन धान्य में वृद्धि हो, गायों और अश्वों की संख्या में वृद्धि हो तथा उसकी सांसारिक समृद्धि बढ़ती रहे। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जीवन भौतिक समृद्धता के प्रति उदासीन नहीं रहा है, बल्कि इसे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके उपरांत भी हिंदू दर्शन इस बात के प्रति सजग था कि धन के संचय और आर्थिक साधनों की होड़ से सामाजिक संघर्षों में वृद्धि न हो जाए। इस दृष्टिकोण से व्यक्ति को केवल गृहस्थ आश्रम में ही आर्थिक क्रियाएं करने की अनुमति दी गई। हिंदू जीवन में अर्थ को इस कारण एक प्रमुख पुरुषार्थ माना गया है कि अर्थ के बिना धार्मिक कृत्यों को पूरा करने की संभावना नहीं की जा सकती। व्यक्ति विभिन्न प्रकार के यज्ञों की पूर्ति, दान, अतिथियों की सेवा और बच्चों का पालन पोषण तभी कर सकता है जब वह प्रयत्न पूर्वक आर्थिक जीवन में प्रवेश करे। इसी आधार पर महाभारत और स्मृतियों में यहाँ तक उल्लेख है कि गृहस्थ आश्रम में अर्थ के पुरुषार्थ को पूरा किए बिना ही वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकते। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा है कि व्यक्ति यदि परिवार तथा समाज की आवश्यकताओं को पूरा किए बिना ही वैराग्य ग्रहण कर ले तो उसे राज्य द्वारा समुचित दंड मिलना चाहिए। इसके उपरांत भी यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे समाज में अर्थ की प्राप्ति स्वयं एक लक्ष्य न होकर लक्ष्य की प्राप्ति का एक साधन मात्र है। इसी आधार पर आर्थिक साधनों को उद्योगों से प्राप्त करने का आदेश देकर भी इसे धर्म की धारणा से इसलिए मिला दिया गया जिससे व्यक्ति ईमानदार व न्यायोचित ढंग से आर्थिक साधनों को प्राप्त करे। अर्थ व धर्म का प्रभाव होने से व्यक्ति को यदि आर्थिक क्षेत्र में असफलता भी प्राप्त होती है तो इसके मन में हीनता की भावना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। पुरुषार्थ के संदर्भ में अर्थ का सम्मुख संबंध सुख और संतुष्टि से भी, अथवा यह कहा जा सकता है कि इसका संबंध दायित्व पूर्ति के आंतरिक संतोष और लौकिक सुख से भी है। इसी धारणा के आधार पर किसी भी ऐसे धन अथवा पदार्थों को प्राप्त करना अधर्म कहा गया है जिनसे संतोष सुख और संतोष में वृद्धि न हो सके। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अर्थ का उपार्जन करने के लिए भी ईमानदारी और आचरण की शुद्धता पर ध्यान रखना अत्यधिक आवश्यक है। इसके अतिरिक्त धन का उपभोग भी इस तरह होना आवश्यक है जिससे न तो किसी को कष्ट पहुंचे और न ही उससे निंदित कार्यों को प्रोत्साहन मिले। इस प्रकार संपत्ति का उपभोग उत्पत्ति इस प्रकार होना आवश्यक है कि सामान्य कल्याण में वृद्धि हो सके। भारतीय जीवन में इस पुरुषार्थ को केवल एक सहयोगी पुरुषार्थ के रूप में देखा गया है। व्यक्ति भौतिक सुख और आर्थिक साधनों को प्राप्त करने में ही पूर्णतया लिप्त न हो जाए, इसलिए उसने गृहस्थ आश्रम को छोड़कर जीवन के शेष 3/4 भाग में अर्थ से पूर्णतया दूर रहने का निर्देश दिया गया है। अर्थ की इस धारणा से स्पष्ट हो जाता है कि यह विचारधारा उन वर्तमान अर्थशास्त्रीय सिद्धांतों का आधार है जिनके अनुसार समाज की वास्तविक समृद्धि भौतिक साधनों के अधिकारिक विस्तार से नहीं बल्कि आवश्यकताओं को कम करने से ही संभव हो सकेगा।